राग भैरों भैरों अष्टपदियां महला पहला कार दूसरा इको सतगुर प्रसाद आत्म मह राम राम मह आत्म चीन से गुर बिचारा।
अज मैं उस गुरु घर की बाणी लै रहा हाँ जिन्हां ने फरमाया सी मेरा उपदेश चौं वर्णों को सांझा। हुण चौवां वर्णों के अंदर थानू पता है सब दुनिया के इंसान आ जाते हैं क्योंकि चार वर्णों के अंदर हर एक कौम के हर एक मजहब के हर एक मुल्क के बाशिंदे आ जाते हैं। गुरु नानक साहब फरमाते हैं आप दी जिहड़ी तालीम है उपदेश है किसी खास कौम वालियां वास्ते नहीं है किसी मजहब वालियां वास्ते नहीं है किसी खास मुल्क के बाशिंदियां वास्ते नहीं है कुल आलम दे वास्ते है सारी दुनिया दे वास्ते है क्योंकि महात्मा ता कुल दुनिया दे रूहानियत दे बादशाह बन के आउंदे हैं। गुरु नानक साहब दा ता हर एक दे नाल प्यार सी इसे वास्ते बाणी विच लिखते हैं ना कोई वैरी नहीं बगाना सगल संग हमको बनाई। गुरु साहब कहते मेरा दुनिया अंदर कोई दुश्मन नहीं है ना मैनू इस दुनिया अंदर कोई बगाना नज़र आता है सब परमात्मा दे बनाए हुए जीव हैं इस वास्ते मैनू सारे ही प्यारे लगते हैं। इसे वास्ते बाणी के जरिए सानू समझाते हैं जिया जंत सब तुसते सबना का सोई मंदा किसनू आखजे जे दूजा होई। ए परमात्मा इस सब दुनिया के जीव तो खुद बनाए हैं हर एक दे अंदर तो खुद बैठा होया है। मंदा और बुरा तो मैं उस इंसान नू कह सकता हाँ जे इन्हां नू किसे होर ने पैदा किया होवे इन्हां अंदर कोई होर परमात्मा रहिंदा होवे। देखो आप साडे ख्याल नू कितना उच्चा ले जाण दी कोशिश करते हैं। गुरु साहब ने साध संगत नू मालक अगे प्रार्थना करनी की सिखाई है तेरे पाणे सरबत का भला। सुबह उठ के सच्चे दिलों मालिक दे कोलों सारी दुनिया दा भला मंगना चाहिदा है। जिहड़ा सारी दुनिया दा भला मंगेगा तुसीं सोचो किसी दी निंदिया चुगली किस तरह कर सकता है किसी नूं बुरा किस तरह कह सकता है किसी दे गले कट्टण दीआं स्कीमां कदे किस तरह सोच सकता है। इस वास्ते गुरु नानक साहब सानूं प्यार नाल समझाउंदे हन आत्म में राम राम में आत्म चीनस गुर बेचारा। ये जिहड़ी साडी आत्मा है उस परमात्मा दी अंश है असी उस सतनाम समुंदर दे कतरे हाँ। लेकिन इस चीज़ की सोझी और समझ कदों आउंदी है जदों गुरमुखां दे दसे हुए उपदेश उत्ते चल के असी उस परमात्मा नूं अपने अंदरों ही पहचानण दे काबल बन जांदे हाँ। तुसीं देखो एक बड़दा दरख्त कितना बड़ा हुंदा है उसका बीज एक बहुत छोटा होंदा है। अगर कोई सानू समझाने की कोशिश करे इतने छोटे जे बीज दे अंदर इतना बड़ा बढ़दा दरख्त है थोड़े किते साड़ी समझ दे अंदर कदे भी नहीं आउंदा। उस बीज नू आपां जमीन दे अंदर बोईए छोटा जिहा पौधा बन के निकलता है आहिस्ता आहिस्ता परवरिश पा के कितना बड़ा बढ़दा दरख्त हो जाता है फिर सानू खुद ही पता लग जाता है। इतने बड़े दरख्त का बहुत छोटा बीज है इतने छोटे जे बीज दे अंदर इतना बड़ा बड़ा दरख्त है। इसे वास्ते गुरु नानक साहब कहिंदे साड़ी आत्मा उस परमात्मा दी अंश है असी उस सतनाम समुंदर दे कतरे हाँ। मालिक दे कोलों विछड़ के माया दे जाल विच फसे हुए हाँ मन दे ताबे हो के जो जो कर्म करते हाँ अच्छे भी करते हाँ बुरे भी करते हाँ उन्हां सारिआं दा नतीजा हर एक नूं इत्थे आ के भुगतना पैंदा है। इन्हां कर्मां करके जिस भी जगह जा के आपां नूं जन्म लैणा पैंदा है उसे जामे अंदर बैठ के दुख और मुसीबतां सहणियां पैंदियां हन। किसी जामे अंदर जा के कदे कोई सुख नहीं हासिल कर सकता कदे कोई शांति नहीं प्राप्त कर सकता। कल मैं बड़ा खोल के अर्ज़ की सी जदों इंसान दे जामे अंदर साडी ये दुर्दशा और हालत है कि रोटी कपड़े वास्ते आपां पटकदे और तड़फदे फिरदे हाँ और किहड़े जामे विच कदे असीं जा के सुख हासिल कर सकांगे शांति प्राप्त कर सकांगे। इस वास्ते गुरु साहब समझाते हैं फिर सच्चे ते सदा सुहागण साड़ी आत्मा इस्त्री है वह परमात्मा इसका पति है। जितना अरसा ये रूह रूपी इस्त्री पति रूपी परमात्मा के चरणों में नहीं पहुँचती ये सुहागण नहीं हो सकती, इसका मरण जमण दिया दुखों तो छुटकारा नहीं हो सकता। बहुत सारे महात्मा ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते स्त्री और पति का रिश्ता कह के याद किया है। कल स्वामी जी ने भी यो किया सी, सुरत सुन बात री तेरा तनी बसे आकाश, ऐ आत्मा तू माया दे जाल विच फसी हुई है, तेरा तनी परमात्मा सचखंड विच बैठा होया है। जितना चिर तू अपने घर वापस नहीं जाएगी तू सुहागण नहीं हो सकती, तेरा मरण जमण दिया दुखों तो छुटकारा नहीं हो सकता। कबीर साहब ने भी इसनों स्त्री और पति का रिश्ता कह के याद किया है। रामा कृष्णा मिशन वाले इसनों माता और बेटे का रिश्ता कह के याद करते हैं। क्राइस्ट ने बाप और बेटा रिश्ता कह के बयान किया है। इन सारिया रिश्तों नू केड़ी चीज़ इकट्ठा करती है, प्रेम इकट्ठा करता है, प्यार इकट्ठा करता है। सो महात्मा समझाते हैं आत्मा और परमात्मा का जोड़ा रिश्ता है ये भगती का रिश्ता है, ये प्रेम का रिश्ता है, ये प्यार का रिश्ता है। ये कोई कौम का रिश्ता नहीं है, मजहब का रिश्ता नहीं है, जातों पातों का रिश्ता नहीं है। इसे वास्ते गुरु घर ने कहा सी, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पायो, जिन्हां दे हिरदे दे अंदर मालिक दे मिलन दी बिरह है, प्रेम है, तड़फ है, प्यार है, उन्हां नूं ही फखर हासिल होएगा कि वह वापस जाके परमात्मा नाल मिल सकन। पलटू साहब कहिंदे, साहब के दरबार में केवल भगत प्यार, मालिक दे घर पहुँचने वास्ते सिर्फ भगती और प्यार की लोड़ पैंदी है। किसी ने साड़ियाँ जातां पातां नहीं पुछनियाँ, किसी ने साडे कौम और मजहब नहीं परखने। इसे वास्ते दादू साहब कहिंदे, इश्क अल्लाह का नाम है, इश्क अल्लाह की जात है। अगर मालिक का नाम पुछते हो इश्क है, प्रेम है। अगर कोई जात पात पुछते हो वह भी इश्क है, प्रेम है। बाइबल के अंदर भी आता है गॉड इज लव, मालिक का असली रूप ही प्रेम और प्यार है। सेंट जॉन के अंदर आता है ब्लेसड आर दोज हू मोर फॉर दे शैल गेट कंफर्ट, वो खुशकिस्मत जीव हैं, वो भागा वाले जीव हैं, उन्हों का देह विच आवना मुबारक है। जिन्हां दे हिरदे दे अंदर मालिक दे मिलन दी बिरह है, तड़फ है, प्रेम है, प्यार है, क्योंकि अखीर उन्होंने ही मालिक दी गोद में जाके समाउना है। सो हर एक महात्मा समझाउंदा है कि आत्मा और परमात्मा का जोड़ा रिश्ता है ये भगती का रिश्ता है, प्रेम और प्यार का रिश्ता है। गुरु नानक साहब बड़ी सुंदर मिसाल दे के दसते हैं, कामन गुणवंती हर पाए, पै पाए शिंगार बनाए। जिस तरह हमेशा दोवां गुणा वाली स्त्री अपने पति नू खुश रख सकती है, किड़े ओरे अंदर गुण हुंदे हैं। एक तो स्त्री दे अंदर अपने पति का अति प्रेम हुंदा है, अति प्यार हुंदा है। दूसरा स्त्री दे अंदर पति का पै और डर हुंदा है, मते कोई मैं ऐसा कर्म कर बैठा, मते कोई मैं ऐसी बोली बोल बैठा जिस तो मेरा पति नाराज हो जावे। वो बोली बोलती है, वो कर्म करती है जिस तो हमेशा ओरा पति खुश रहे। सो गुरु साहब कहिंदे, जिहड़ी इसे तरह जिहड़ी आत्मा इन्हां दोवां चीज़ां दा शंगार करती है, जिस आत्मा दे अंदर मालिक दे मिलन दा इश्क है, प्रेम है, प्यार है, जिस आत्मा दे अंदर मालिक दा भय है, डर है, मते कोई मैं भैड़ा खोटा पाप और कर्म कर बैठा, किसी दा दिल दुखा बैठा जिस तो मालिक मेरा नाराज हो जावे, उससे आत्मा नू फखर हासिल होवेगा कि वह वापस जाके परमात्मा नाल मिल सके। इस वास्ते महात्मा कहिंदे हन कि आत्मा और परमात्मा दा जिहड़ा रिश्ता है ये तो केवल भगती दा रिश्ता है, ये प्रेम दा रिश्ता है, ये प्यार दा रिश्ता है। हुण मन विच तुसी देखो मालिक दी किहड़ी जात है, तुसी सब जानदे हां एक परमात्मा है, कोई नहीं कहिंदा हिंदुआं दा कोई होर है, सिखां साईयां मुसलमानां दा कोई होर परमात्मा है। गुरु नानक साहब कहिंदे, सबना जियां का एको दाता सो मैं विसर न जाही। जिस सारी दुनिया नूं रचना करन वाला एक परमात्मा है, जिहड़ा सारियां दा दाता है, सारियां दा बादशाह है, जो सब दी संभाल परवरिश करदा है। मुसलमान फकीरां ने भी उस परमात्मा नूं रब्बुल आलमीन कह के याद किया है, रब्बुल मुसलमीन कह के बयान नहीं किया। वह रब जिहड़ा कि कुल आलम दा है, वह रब नहीं जिहड़ा कि सिर्फ मुसलमानां दा है। ऋषि मुनि भी उस परमात्मा नूं एक एक का कहिंदे चले आ रहे हैं, और ये भी गुरु नानक साहब फरमाउंदे हन, वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्मे श्रेष्ट पाएगा। जिस परमेश्वर ने अपने हुक्म दे जरिए सारी सृष्टि की रचना पैदा की है, ना वो काला है, ना वो गोरा है, ना वो हिंदू है, ना वो सिख है, ना वो ईसाई है, ना वो हिंदुस्तान दे रहने वाला है, ना अमरीका और अफ्रीका दे रहने वाला है। अगर परमात्मा की कोई जात पात नहीं है, परमात्मा की कोई कौम और मजहब नहीं है, मुल्क नहीं है, तुसी सोचो आत्मा दी केड़ी जात पात हो सकती है, आत्मा दी केड़ी कौम और मजहब हो सकता है। अगर सूरज दी ही कोई जात पात नहीं है, मामूली रोशनी दी की जात पात होगी। अगर समुंदर दी ही कोई कौम और मजहब नहीं है, मामूली कतरे दी की कौम और मजहब हो सकता है। परमात्मा ने इंसान पैदा किया है, असी छोटियां छोटियां जातां पातां कौमां मजहबां मुल्कां अंदर अपने आप नूं तकसीम करी बैठे हाँ, और एक दूसरे के पिन पेद विच फसे हुए हाँ। हालांकि हर एक महात्मा इन्हां छोटियां छोटियां झगड़ियां तो साडे ख्याल नूं बहुत उच्चा ले जाण की कोशिश करते हैं। इसे वास्ते गुरु नानक साहब ने कहा सी, जिथे लेखा मंगिए तिथे दे जात न जाए। जिस जगह साडे कर्मां दा हिसाब किताब होना है, ना तो उत्थे साडे शरीर ने पहुँचना है, ना उत्थे साडियां किसी ने जातां पातां पुछनियां हैं। तुसीं देख लो, इन्हां जातां पातां दा तलक, कौमां मजहबां दा तलक अपने शरीर दे नाल है। शरीर ने या तो अग्नि दे सपुरद हो जाना है या मिट्टी दे सपुरद हो जाना है। किसी दे कौम और मजहब अग्नि दे सपुरद होकर खत्म हो जाते हैं, किसी दियां जातां पातां मिट्टी विच ही रुलदियां रहिंदियां जांदियां हैं। उत्थे साडा भगती भाव देखिया जाना है, मालिक दे मिलन दा इश्क प्रेम और प्यार देखिया जाना है। इसे वास्ते कबीर साहब ने कहा सी, जात पात पूछे ना को, हर को पजे सो हर का हो। जातां पातां थोड़ियां किसी ने नहीं पूछनियां। जो परमात्मा की भगती करता है वह परमात्मा का रूप हो जाता है। हिंदू होकर परमात्मा की भगती करो, सिख ईसाई होकर परमात्मा की भगती करो, इस भगती ने थानू वापस जाके मालिक नाल मिलाना है। मते थोड़े मन में ख्याल होवे कि हिंदुओं तो सिख बन गए हो ता करके मालिक नूं मिल सकते हो, या मुसलमान बनना पवेगा या ईसाई बनना पवेगा। इस वास्ते कबीर साहब कहिंदे, ख्याल ही हमेशा वास्ते मन चों कढ दिओ। इहो बुल्ले शाह ने कहा सी, अमलां उत्ते हुण नबेड़े खड़े रहण दिया जाता। जिहड़े अपने अमलां दी तरफ ध्यान दिंदे हन, कर्मां दी तरफ ध्यान दिंदे हन, उन्हां दा ही उत्थे हिसाब किताब खत्म होवेगा। जिहड़े जातां पातां दे हंकार और गुरूर विच फसे होए हन, उन्हां नूं उत्थे किसी ने नहीं पुछना। पलटू साहब यूपी के अंदर बड़े मशहूर लातड़क महात्मा होए हैं, अपने बाणी द्वारा समझाते हैं, पलटू ऊंची जात का मत कोई करे हंकार, साहब के दरबार में केवल भगत पिया। मत किसी के मन में ये ख्याल होवे कि मैं ब्राह्मणा के घर जन्म लिया है, मैनू ही परमात्मा दे मिलन दा फखर हासिल हो सकता है, या मैं किसी होर जाति अंदर जन्म लै बैठा हाँ, शायद कदे भी परमात्मा दी भगती नहीं कर सकता। पलटू साहब कहिंदे, ख्याल ही हमेशा वास्ते अपने मन चों कढ दिओ। उस परमात्मा दे घर पहुँचण वास्ते केवल भगती दी लोड़ पैंदी है, केवल प्यार दी लोड़ पैंदी है। इसे वास्ते गुरु नानक साहब कहिंदे हन, बिन नाम में सब नीच जात हैं, विष्टा के कीड़े हुए। जिहड़े मालिक दी भगती नहीं करदे, नाम दी कमाई नहीं करदे, उन्हां तो ज़्यादा नीची जात वाला कौन हो सकता है। जिन्हां ने मौत तो बाद जाके विष्टा दे कीड़े बनना है, गंदगी दे कीड़े बनना है, किन्हां दी उच्ची जात है। जिस नाम हृदय सो उच्चे उच्चा सच्चे आप सवारी। जिन्हां दे हृदय दे अंदर मालिक दा नाम वस जाता है, मालिक दा प्यार वस जाता है, ਉਹ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਸੁੱਚੇ ਤੋਂ ਸੁੱਚੇ ਹਨ, ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੇ ਰਹੋ। ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਕਾ ਹੁਜਰਾ ਸਾਫ ਕਰ ਜਾਣਾ ਕੇ ਆਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਧਿਆਨ ਗੈਰੋ ਕਾ ਉਠਾ ਉਸਕੋ ਬਿਠਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ? ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਛ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਪੋਚੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਮਤੀ ਕਾਲੀਨ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਖਮਲ ਦੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਅਤਿ ਗੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤਿ ਮੈਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ, ਸਭ ਗੈਰ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੌਮ ਮਜ਼ਹਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਗੈਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਅਤਿ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਟਕਦਾ ਔਰ ਤੜਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢੋ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮਿਲਣ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਬੀਵੀ ਨਾਲ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਥ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਕੌਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੈਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਚ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਟੌਪ ਆਫ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਤ ਵਗੈਰਾ ਘਾਸ ਫੂਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਿੱਪਲਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਲਸੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਉਲਟੇ ਪਲਾਂਟ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਂ ਆਸਾ ਤਹਾਂ ਵਾਸਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਿੱਛੂ ਹਨ, ਸੱਪ ਹਨ, ਠੂਹੇ ਵਗੈਰਾ ਹਨ। ये भी इंसान तो इनफीरियर हैं, इस वास्ते ये भी साड़ी भगती और प्यार दे काबिल नहीं हो सकते। तीसरी क्लास परिंदियां दी है, साढ़े अंदर पांच तत्त हैं, इन्हां परिंदियां अंदर तीन तत्त हैं। अगर असी गरड़ कुगियां कबूतरां चिड़िया नाल प्यार करते हाँ, इन्हां दी भगती करते हाँ, की नतीजा होगा? गरड़ बन जावांगे, कबूतर बन जावांगे, चिड़िया बन जावांगे, तोते बन जावांगे। असी तो इंसान के जामे तो उपर जाने की कोशिश करते, उल्टा इन्हां नाल प्यार पा के असी नीचे जामिया विच आ जाते हैं। इस वास्ते ये परिंदे भी साढ़े भगती के काबिल नहीं हो सकते। चौथी क्लास चुपाया जानवरां दी है, जिन्हां अंदर सेंस नहीं हुंदा, बुद्धि और आकाश नहीं हुंदा, बाकी सब चीज़ां मौजूद हैं, मंझां गाइयां घोड़ियां भी भगती दे काबिल नहीं हैं। पंजवीं क्लास इंसानां दी खुद है, इंसान इंसान नाल प्यार करे तां क्यों करे? खासकर अजकल दे जमाने अंदर जदों साढ़े सब दे एक जैसे हकूक हैं, हुण इंसान इंसान नाल प्यार नहीं करता, होर कोई चीज़ उन्हों प्यार करन दे काबल नज़र नहीं आउंदी। देवी देवते कदे देखे नहीं, मालक दी शकल रंग रूप दा उन्हों पता नहीं। असी बड़ी सोच और विचार विच पै जांदे हाँ, आखिर किस दी संगत और सोबत किस दा प्यार साढ़े अंदर मालक दा प्यार पैदा कर सकता है? हजूर महाराज जी बड़ी सुंदर मिसाल दिया करदे सन कि कमरे दे अंदर तुसीं बहुत सारे रेडियो रखदे हो, जिन्हां दा कलैक्शन किसी बिजली या बैटरी नाल ना होवे, तुसीं कदे भी किसी मुल्क दीआं खबरां नहीं सुन सकते। अगर तुसीं उन्हां नूं बिजली या बैटरी नाल कनैक्ट करदे हो, जिस मुल्क दीआं चाहे तुसीं खबरां सुन सकते हो। असीं उन्हां मालक दे भगतां और प्यारियां दी संगत और सोबत करनी है जिन्हां दी लिबस परमात्मा दे नाल जुड़ी हुई है। असी उन्हां दी संगत और सोबत करते हाँ, उन्हां नाल प्यार करते हाँ, ताकि उन्हां दे जरिए साढ़े अंदर भी मालक की भगती हो पैदा हो जाए, साढ़ा भी मालक नाल लिव लग जाए। क्योंकि उन्हां दा जिहड़ा असली स्वरूप हुंदा है वह शब्द हुंदा है, वह नाम हुंदा है। इस वास्ते भाई गुरदास ने कहा सी, गुरमूरत गुर शब्द है। गुरमुखां दा जिहड़ा असली स्वरूप है शब्द है, जिस दे नाल साडे ख्याल नूं जोड़दे हन। साडा भी जिहड़ा असली गुरु है वह शब्द है। गुरु नानक साहब कहिंदे, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। वह शब्द साडा सारियां दा गुरु है और आत्मा उस शब्द की सेवक है। ये जिहड़ा जिसम है ये तो सेवक ने भी इत्थे छड़ जाना है, गुरमुखां ने भी इत्थे छड़ जाना है, लेकिन जो सेवक गुरमुखां दे जरिए अपनी आत्मा नूं शब्द दे नाल जोड़दा है, वह शब्द उस सेवक की आत्मा नहीं छड़दा। इस वास्ते असली गुरु शब्द है, असली सेवक आत्मा है। इस वास्ते कबीर साहब ने कहा सी, शब्द मिलावा होत है, देह मिलावा नहीं। शब्द ने मालक नाल मिलाउणा है, देह ने थानू परमात्मा नाल नहीं मिलाउणा। गुरु नानक साहब बड़ी सुंदर मिसाल दे के समझाउंदे हन, खंड पताल दीप सब लोआ, काले वस आप प्रभ किया। परमात्मा ने सारी दुनिया की रचना पैदा करके खंड पताल दीप वगैरह जो कुछ भी नज़र आते हैं या नहीं नज़र आते, इसका सारा जड़ा इंतजाम है वह काल दे सपुरद कर दिता है। काल की हद ब्रह्म तिकर है, तलोकी तिकर है। जो जो कुछ काल के दायरे के अंदर है वह सब मरण जमण दिया दुखों में फसया होया है। गुरु साहब कहिंदे, नेचर एक आप अविनाशी, सो नेचर जो तिसे ते आएगा। लेकिन वह परमात्मा नेचल है, वह परमात्मा कदे मरण जमण दे दुखों विच नहीं आउंदा। जिहड़े उस परमात्मा नाल प्यार करदे हन, उसनू त्यौंदे हन, वह भी नेचल हो जाते हैं, उन्हां दा भी मरण जमण दे दुखों तो छुटकारा हो जाता है। वह सवाल फिर पैदा हो गया कि मालक तो देखिया नहीं, मालक की भगती किस तरह करनी है, मालक नाल प्यार किस तरह करना है? गुरु नानक साहब कहिंदे, हर का सेवक सो हर जिया, भेद न जानो मानस देहा। जिहड़े मालिक दे भगत और मालिक दे प्यारे हुंदे हन, वह मालिक दी भगती करके मालिक दा रूप हो जांदे हन। उन्हां दे अंदर और परमात्मा दे अंदर कोई भी भिन्न और भेद नहीं हुंदा। उन्हां दा परमात्मा नाल की तलक है? ज्यों जल तरंग उठे बहु पाथी, फिर सरले सरल समाएगा। जिस तरह पानी अंदर दो चार मिनट वास्ते एक लहर उठती है, फिर वो लहर वापस जाके पानी विच ही समा जाती है। ਜੋ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਔਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਤਨੀ ਉੱਚੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਂਟ ਪਾਪ ਸਭ ਨਾਸ਼ੇ, ਹਰ ਸੇ ਦਿਓ ਮਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੰਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਔਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਈ ਐਂਡ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਆਰ ਵਨ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੌਲਾ ਆਦਮੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੂਪ ਜਗਤ ਮੇਂ ਗੁਰ ਹੋਏ ਜੀਵ ਜਿਤਾਏ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਆਤਮ ਮੈਂ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਮੈਂ ਆਤਮ, ਜੀਨਸ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀ, ਦੁੱਖ ਕਾਟੇ ਹੋ ਮਾਰਾ।
ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਖੁਦੀ ਸੈਲਫ ਔਰ ਈਗੋ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਏਕਾ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਤਿਗ੍ਰਹਿ ਬਸਤੇ, ਮਿਲ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰਤੇ ਪਾਈ। ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਨਾ ਕਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਤਰ ਲੱਖ ਨਾ ਜਾਏ ਲਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਹੋਮੇ ਪਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਦਾਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਦੇ ਬਣ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਜਹਾਂ ਆਸਾ ਤਹਾਂ ਬਾਸਾ, ਜਿੱਧਰ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵ ਉਸੇ ਹੀ ਰੌ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਈ? ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਔਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਿਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਸ ਮਿੱਠਾ ਬਿਨ ਚਾਕੇ ਸਾਧ ਲਾਏ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਲੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਸ ਮਿੱਠਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਜ਼ਤ ਉਸ ਲੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕੌਡੀਆਂ ਮਗਰ ਦਰਬਦਰ ਨਹੀਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਤਨਾ ਅਰਸਾ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਡਿਟੈਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸੰਤਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਠਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਫ ਮਨ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਵਕਾਰਾਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ, ਧੀਆਂ, ਕੌਮਾਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੌਡੀਆਂ ਮਗਰ ਦਰਬ ਦਾ ਠੋਕਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਕੌਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਲਓ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੁੱਠ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਮਿੱਠਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੀ ਲੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਿੱਠੀ ਹਨ? ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕੌਮਾਂ ਮਸਬਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਤਾਂ ਲਸਤਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜੋ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜੋ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਸੋ ਮਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮਰੇ ਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਦੇ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸੇਜਨ ਸਾਚੇ ਆਪ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਬਲਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਨਾਤਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅੱਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਹਰੀ ਓਮ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਹਨ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਫਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਲਫਜ਼ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਫਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਫਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, सकता है, ना जबान नाल बयान किया जा सकता है, जिहड़ी ना हिस्ट्री ट्रेस की जा सकती है, ना म्याद मुकर्रर की जा सकती है। इसे वास्ते गुरु साहब ने कहा सी, अखां बाजों वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना बिन हत्था करना, जीबे बाजों बोलना यो जीबत मरना, नानक हुक्म पछाण के त्यों कसमें मिलना। तुसी उस शब्द नूं पकड़ के, उस हुक्म या शब्द नूं पकड़ के अपने खसम के परमात्मा नूं मिलोगे, जिन्हों थोड़ियाँ आ अखा कदे नहीं देख सकदियाँ, जिन्हों थोड़ी आ जबान कदे नहीं बयान कर सकती, जिन्हों थोड़े कन कदे नहीं सुन सकते, जिन्हों थोड़े हाथ कदे लिख नहीं सकते, पैर कदे लैके पहुँच नहीं सकते, जिस चीज़ नूं तुसी जींदे जी मर के हासिल करना है। जींदे जी का मतलब कि जिस चीज़ नूं तुसी नवा दुवारिया चो ख्याल कढ के अखा पिछे लिया के हासिल करना है। इनूं जीवत मरना इस वास्ते आम संतां महात्मा ने कहा है कि जदों भी किसी नूं मौत आउंदी है, पहला उरे पैरां तो ख्याल सिमट के उपर दी तरफ आउंदा है, जदों इत्थे आउंदा है आत्मा शरीर नूं छड के एक तरफ हो जांदी है, असीं कहिंदे ओ गुजर गया। सो इसे सिस्टम और तरीके दे नाल असीं सिमरन और ध्यान दे जरिए ख्याल नूं अखां पिछे लियाउणा है, इहनूं जीवत मरना कहिंदे हन, ताकि असीं शब्द दे नाल उस शब्द दे नाल ख्याल जोड़िए, जिस शब्द नूं कन अखां नहीं देख सकदियां, क्योंकि उरे अंदर ज्योति है, उरे अंदर प्रकाश है, असीं उस शब्द नूं जरूर देखना है, लेकिन वह होर अख है जिहड़ी उस शब्द नूं देखदी है, वह होर कन है जिहड़े उस कन जिहड़े उस शब्द नूं सुणदे हन, वह होर पैर है जिहड़े उत्थे शब्द नूं कि जिहड़े उस जगह सानूं लै के शब्द सुनण वास्ते पहुँचदे हन। इस वास्ते आप फरमाउंदे हन, ये बाहर दा शब्द दा जिक्र नहीं करदे, नौ दरवाजे नवें दर फीके रस अमृत दसवीं च वीजे। गुरु साहब कहिंदे अखां तों नीचे नीचे तां इंद्रियां दे भोग हन, विशियां वकारां शराबां कबाबां दीआं लस्तां हन। अगर तुसीं रस दे भरे होए अमृत नूं पीणा है, जिसनों पी के ही थोड़े अंदरों माया का मोह माया का प्यार निकलना है, होमे की रुकावट दूर होनी है, वो दसवें चवीजे थोड़े अखा के पिछे बरसन लगा हुआ है। जितना चिर को उस नुकते और पॉइंट के ख्याल इकट्ठा ही नहीं करता, जिथे दाता दात दे रहा है, बख्शिश कर रहा है, अमृत रूपी नाम बरसन लगा हुआ है, तुसी देखो असी उस अमृत नूं पी किस तरह सकांगे। कितनी भी जबरदस्त बारिश क्यों ना हुंदी होवे, अगर एक बर्तन नूं तुसीं उल्टा के रख देवोगे, उस बर्तन के अंदर एक पानी का कतरा नहीं जा सकता, सीधा कर देंगे पहली नहीं दूसरी तीसरी बारिश भर जाएगा। जिस मन ने अमृत नूं पीना है, वह तो अखां पिछों उतर के इन्हां नवां दुवारियां दे जरिए सारी दुनिया के अंदर फैलिया होया है, जितना चिर उसनों समेट के आपां अखां पिछे नहीं लियावांगे, ये शब्द की लज्जत किस तरह हासिल कर सकता है। उन्होंने क्राइस्ट ने लिविंग वाटर कह के याद किया, रिखी मुनी अमृत कहिंदे हन, मुसलमानों ने आबे हयात कह के बयान किया है, वह यो चीज़ है जिसनों पा के असी अमर हो जाते हाँ, जिसनों हासिल करके साडा मरण जमण दिया दुखों तो छुटकारा हो जाता है। गुरु नानक साहब कहिंदे, नौ दर ठाके ताबत रहाए, दसवें निज कर वासा पाए, उत्थे अनहद शब्द वजे दिन राती गुरमती शब्द सुनावणिया। जदों तुसीं नवां दुआरियां चों ख्याल कढ के अखां पिछे इकट्ठा करोगे, तुसीं अपने घर दे दरवाजे ते पहुँच जावोगे। घर दे दरवाजे की निशानी की है, कि असली घर दे दरवाजे ते ख्याल इकट्ठा होया है, या किसी गलत जगह ख्याल इकट्ठा कर बैठे हैं। गुरु साहब कहिंदे, उत्थे अनहद शब्द वजे दिन राती, थोड़े घर दे दरवाजे ते दिन नूं भी रात नूं भी अनहद शब्द तुनकारा देन लगा होया है। वो दिन नूं भी तुनकारा दिंदा है, रात नूं भी तुनकारा दिंदा है, वो चोरा अंदर भी है, ठग्गा अंदर भी है, साधु संतां महात्मा अंदर भी है। उत्थे किसी कौम का मजहब का मुल्क का सवाल पैदा नहीं हुंदा। हिंदू होके अंदर जाओ, सिख ईसाई होके अंदर जाओ, जो खुशकिस्मत पागा वाला अखा पिछे ख्याल इकट्ठा करता है, वह अपने अंदरों शब्द की सुरीली आवाज़ नूं सुनना शुरू कर दिंदा है, वह शब्द के प्रकाश नूं असीं अपने अंदरों देखना शुरू कर दिंदे हाँ। इस वास्ते गुरु साहब कहिंदे, बिन शब्दे अंतर अनेरा, ना वस्त लहे ना चूके फेरा। उस शब्द की कमाई तो बगैर ना तो थोड़े अंदरों कदे अग्ञानता का अंधेरा दूर होना है, ना थानू कदे परमात्मा मिलना है, ना थोड़ा कदे मरण जमण दे दुखों तो छुटकारा होना है। सो गुरु साहब उस शब्द की महिमा करते हैं, जिस दे अंदर आवाज़ भी है, जिस दे अंदर ज्योति भी है, जिस दे अंदर प्रकाश भी है। इसे वास्ते कहिंदे हन, कासिट में ज्यो है बसंतर मत संजम काड कढ़ीजे राम नाम है जोत सबाई तद गुरमत काड लीजे। जिस तरह भरावा लकड़ी के अंदर अग्नि है ना थानू नज़र आती है ना उस अग्नि तो तुसी कोई फायदा उठा सकते हो। अगर थानू जुगती पता लग जाए तुसी लकड़ी ते रगड़ रगड़ के अग्नि पैदा भी कर लेंगे हो देख भी सकते हो फायदा भी उठा सकते हो। इस तरह गुरु नानक साहब कहिंदे ओ राम नाम की जिहड़ी जोत है वह हर एक दे अखां पिछे जगन लगी हुई है। सब दे गुरु साहब कहिंदे सबाई सारी दुनिया के अंदर जगती है जिहड़े मालक नूं नहीं मनदे उन्हां दे अंदर भी जगती है। जिथे कोई कौम और मजहब और मुल्क का सवाल पैदा नहीं होया जिहड़े गुरमुखां दे उपदेश उत्ते चलते हैं अखां पिछे ख्याल इकट्ठा करते हैं उस जोत के दर्शन करते हैं उस शब्द की आवाज़ को अपने अंदरों सुनते हैं। क्योंकि असी शब्द की आवाज़ को सुन के अंदरों घर का रुख कायम करना है उस प्रकाश के जरिए अंदरों असी अपना रूहानी सफर तय करना है। मिसाल के तौर पर अगर तुसी अपने इतों हैडक्वाटर तो शाम को सैर करते करते खेतों के विच कितने दूर निकल जावो रात पै जाए अंधेरा हो जाए थानू पता ना लगे किहड़ी तरफ तुसी अपना डेरा छोड़ आए हो इत्थे वापस आने वास्ते की करोगे ध्यान दे नाल सुनोगे कोई ना कोई डेरे की तरफों थानू आवाज़ आउंदी होवे किसी गुगू किसी घंटी की आवाज़ आउंदी होवे उस आवाज़ को सुन के यकदम थोड़े कन उस यकदम तुसी रुख कायम कर लवोगे थोड़ा सत्संग घर अगली तरफ है कि पिछली तरफ है कि दाई तरफ है कि बाई तरफ है। जिस वक्त रुख पता लग गया क्योंकि रस्ते अंदर अंधेरा है उच्ची नीची जमीन है झाड़ियाँ वगैरह हैं अगर टॉर्च थोड़े हाथ में होवे उच्ची नीची देखते हुए जमीन तुसी अपने घर वापस आ जाते हो। किहड़ी चीज़ आपां नूं लियाई वो आवाज़ ले आई वो ज्योति और प्रकाश ले आया। इस वास्ते हर एक महात्मा उस शब्द की आवाज़ का जिक्र करता है शब्द के प्रकाश का जिक्र करता है। इस वास्ते पलटू साहब ने कहा सी निकसे एक आवाज़ चिराग की ज्योति माही ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नाही। जिहड़े गुरमुख आंदे उपदेश उत्ते चल के समाधि लगाउंदे हन वो अपने अंदरों शब्द की आवाज़ को भी सुनते हैं और अपने अंदरों ज्योति के भी दर्शन करते हैं। यो गुरु नानक साहब कहिंदे अंतर ज्योत निरंतर बाणी सच्चे साहिब सिंह लिवलाई हर एक दे अंदर इत्थे ज्योत जगदी है उहदे अंदरों मिठी और सुरीली बाणी की आवाज़ उठन लगी हुई है। जिहड़े उस ज्योत के दर्शन करते हैं बाणी की आवाज़ को सुनते हैं सच्चे साहिब सिंह लिवलाई उन्हों का दुनिया चो मोह और प्यार निकल जाता है उन्हों का परमात्मा नाल मोह और प्यार पैदा हो जाता है। सो महात्मा उस शब्द की महिमा करते हैं महात्मा उस नाम की महिमा करते हैं। ग्रंथा पोथियां वेदा शास्त्रा अंदर महात्मा वो शब्द और नाम की महिमा के नाल भरे हुए हैं लेकिन शब्द और नाम ग्रंथा पोथियां चो नहीं मिलना वो सानू साडे शरीर चो मिलना है देह और वजूद चो मिलना है। इस वास्ते महात्मा समझाते हैं डॉक्टर दियां किताबां दे पढ़न दे नाल कदे जिस्म चो बीमारियां दूर नहीं होंदियां क्योंकि उन्हां दियां किताबां च नुस्खे लिखे हुए होंदे हैं उन्हां दवाइयां दे इस्तेमाल करन नाल जिस्म चो बीमारियां दूर होंदियां हैं। रेलवे दा टाइम टेबल पढ़न पढ़ाउण दे नाल तुसी देखो कोई रेलवे दा सफर तय नहीं होंदा इनफॉर्मेशन दे मुताबक टिकट लै के गड्डी विच बैठण नाल रेलवे दा सफर तय होना है। खाना बनाउण दी किताब पढ़न पढ़ाउण दे नाल पेट नहीं भरदा खाना बना के लिया के खा लीए ता ही पेट भरता है। सो ग्रंथा पोथियां पढ़न पढ़ाउण दे अंदर मुक्ति नहीं है जो कुछ पढ़ते हाँ पढ़ाते हाँ उहदे ते अमल करन दे उत्ते मुक्ति है। अमल की करना है कि अपने ख्याल नूं नवां द्वारियां चो कढ के अखां पिछे लिया के उस शब्द दे नाल जोड़ना है नाम दे नाल जोड़ना है। इस वास्ते इत्थे गुरु साहिब फरमाउंदे हन अमृत बाणी शब्द पछाणी हों मारा कि जदों असी अमृत भरी बाणी दे नाल ख्याल शब्द दे नाल अंदरों जोड़ देवांगे और इतनी उच्ची लज्जत सुची लज्जत है साडा आटोमैटिकली दुनिया चो मोह और प्यार निकल जाता है। गुरु साहब ने कहा सी जिन अंतर शब्द आप पछाणे गत में तिन ही पाई जिहड़े अंदरों शब्द की लज्जत हासिल करते हैं वो अपने आप नूं पहचानण दे काबल बन जाते हैं उन्हां नूं मालिक दे मिलन की जाच प्राप्त हो जाती है गति प्राप्त हो जाती है। फिर कहिंदे मनुआ सुन समाद लगाए ज्योति जोत मलाई उन्हां दा मन वापस ब्रह्म त्रिकुटी अपने टिकाणे ते पहुँच जाता है उन्हां दी ज्योति जाके जोत विच रल जाती है। सो जो कुछ मिलना है शरीर के अंदरों मिलना है शब्द की कमाई के जरिए मिलना है नाम की कमाई के जरिए मिलना है।
अमृत बाणी शब्द पछाणी, दुख काटे हमारा, नानक हो मैं रोग बुरे, नानक हो मैं रोग बुरे, जह देखा तह का बेदन, आपे बख्शे शब्द धुरे।
गुरु साहब साड़ी हालत देख के तरस खाते हैं कि नानक हम में रोग बुरे, हम में दी बड़ी बुरी बीमारी है, मालक दा किसे नू पता नहीं है, मालक दी भगती तरफ किसे दा ध्यान ही नहीं जाता, इन्हों विशियां वकारा शराबा कबाबा कौमा मजहबा मुल्का दे झगड़िया तो सानू फुरसत ही नहीं मिलती। गुरु नानक साहब कहते जहाँ देखा तां एका बेदन, जिधर भी आप दुनिया वल नज़र मारते हैं सब दुनिया के जीव आप नू इको बीमारी विच फसे हुए नज़र आते हैं। ये कि बीमारी है? ये माया दे मोह माया दे प्यार दी बीमारी है। हमें करके ही तो आप इस रचना का हिस्सा बने बैठे हाँ। इतना आप इंद्रियां दे भोगां विशियां वकारां दे गुलाम हो गए हाँ कि होर तो होर अपनी मौत नूं भी भुले बैठे हाँ। रोज़ देख रहे हाँ साढ़े साथी साढ़ा साथ छड़ी जा रहे हैं, खुद नाल हो के उन्होंने शमशान भूमि ते छड़ के आने हाँ। अखां नाल देखते हाँ कि खाली हथ गया है, किसी चीज़ ने उसका साथ नहीं दिता। अव्वल तो साढ़े मन में ख्याल होंदा है कि शायद मौत लोगों वास्ते है, साढ़े वास्ते है ही नहीं, अगर है भी तो असी शायद सब कुछ ही दुनिया में इकट्ठा करके साथ ले जावांगे। इस वास्ते गुरु साहब गफलत की नींद तो बेदार करते हैं कि तुसी कदी उस समय और वक्त नूं तां अखां अगे रख के देखो, थोड़ी कौन सहायता करेगा, कौन मदद करेगा, उसके मुतलक तां की सोचना है। तो सारा दिन दे ईगो विच ही फसे रहिंदे हाँ, दे हंकार विच ही फसे रहिंदे हाँ, ये भी कदे सोचने की कोशिश नहीं करते। आखिर शरीर विच बैठ के असी इतना हंकार किस चीज़ का करते हैं, इतना गरूर किस चीज़ का करते हाँ, जवानी का करते हाँ, कदे किसी का बुढ़ापा नज़र नहीं आता, या असी खूबसूरती का करते हाँ, कदे हस्पताल जाके बीमारा दी शक्ल नहीं देखियां, जॉन्डस निकल आवे या चीचक निकल आवे, अपनी शक्ल शीचक देखने को दिल नहीं करता। बड़िया बड़िया सेठा शाहूकार राजा महाराजा तुम कंगाला वागू सड़कों पर देखा है, या कोई हुकूमत के नशे का हंकार है, तुम देख लो रातों रात हुकूमत के पलटे पलट जाते हैं, वो लोग चुक के दूसरे दिन जेलखाने में बैठे हुए हैं। असी हंकार किस चीज़ का करते हाँ, गरूर किस चीज़ का करते हाँ। इस वास्ते स्वामी जी ने कहा सी, मन रे क्यों गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पढ़ना। तुसी केड़ी चीज़ का हंकार करते हो? जिसम का, इन्हें तो अग्नि दे सपुरद हो जाना है, मिट्टी दे सपुरद हो जाना है, थानू धर्मराज कोल पेश किया जाना है, थोड़िया कर्मां दे मूजब खाशा तिश्ना दे मूजब जिथे वह मुनासिब समझूगा उत्थे जाके थानू जन्म लेना पता पैना है। पता नहीं किन्ना माता पिता के गोद में बहना पवेगा, किन्ना गंदियां नलियां में थानू जाके सड़ना पवेगा, खिलना पवेगा। एक जन्म पिछों हुंदा है, मौत अखां अगे आके खड़ी हो जाती है, रोंदे पिटदे मौत तो छुटकारा हुंदा है, दूसरा शरीर पहला ही साढ़े वास्ते तैयार खड़ा हुंदा है। जिन्हों 10 कड़ियां मंगू दस, जिन्हों 10 नंबरियां मंगू हथ कड़ी लगी रहे, कचहरी चो रोज़ वारंटी इशू हुंदे रहन, तुसी सोचो हंकार किस चीज़ का करता है, गरूर किस चीज़ का करता है। हिस्ट्री पढ़ के देखो, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े डिक्टेटर, बड़े बड़े बादशाह फाथा, जिन्हां कोल दुनिया थर थर कंबिया करती सी, जिन्हां दे मुँह चो लफ्ज़ निकलिया कानून की शक्ल अख्तियार कर लैंदा सी, अज उन्हां दी हस्ती कित्थे है? उन्हां दीआं कबरां नूं आपां ठोकरां मार मार के गुजरदे हाँ, उन्हां दीआं हड्डियां साढ़े पैरां हेठां के खराब हो रही हैं, उन्हां दी मिट्टी साढ़ियाँ अखां नूं अंधा करन लगी हुई है, कि असी भुले बैठे हाँ, साढ़ियाँ भी कबरां नूं लोकां ने इस तरह ठोकरां मारनियां हैं, साढ़ियाँ भी हड्डियां लोकां दे पैरां हेठां रुलनियां हैं, असी भी मिट्टी में समा के लोकां दीआं अखां अंधियां करनियां हैं। असी समझदे हाँ मौत तां शायद लोकां वास्ते है, साढ़े वास्ते ऐशो इशरत है, शराबां कबाबां दीआं लस्तां हैं। इस ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਰੂਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਵੇਦਨ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਇੱਕੋ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਰੇ। ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਮਰਨਾ ਸਭ ਤੁਧੇ ਤਾਂ ਹੀ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤਿਸ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਰਨਾ ਜੰਮਣਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਚਤਰਾਈ। ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫਕਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਤਰਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਕਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਘੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਹਿ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਕਾ ਬੇਦਨ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੈ ਸ਼ਬਦ ਧੁਰੇ, ਆਪੇ ਪਰਖੈ ਪਰਖਣ ਹਾਰੈ, ਬਹੁਰ ਸੁਨਾਕ ਨ ਹੋਈ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਭਈ ਗੁਰੂ ਮੇਲੇ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ਸੱਚ ਸੋਈ।
ਆਪ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਖ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖਦਾ ਸੀ, ਖੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਪਿਓਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਖ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖ ਦੇ ਕਾਬਲ ਖੁਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਗੁਰ ਮੇਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਖ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਭਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਰਖ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਔਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋ ਕਛੂ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਵਹੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਗਰ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ, ਜੇ ਦਾਤਾ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਾਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਤੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਾਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। और ये दाता अगर मंगांगे दाता नूं लैण वास्ते सानूं जन्म लैणा पैंदा है। गुरु साहब कहिंदे दिंदा दे लैंदे थक पाए जुगा जुगंतर खाए खाए जुगा जुगा तो लमियां लमियां अरदासां करके आपां मालक दे कोलों मंगदे चले आ रहे हाँ। वह दाता साडियां अरदासां पूरियां सुनदा आया है, वह पूरियां करदा आया है, जिसका की नतीजा है हाले आपां सारे 84 दे जेल खाने विच फसे होए हाँ। जदों वह दया मेहर करके सानूं अपने नाल मिला लवेगा असी और कोलों मंगना शुरू कर देवांगे तां साडा किते देह दीआं बंधना तो छुटकारा होना है। मैं कई दफ़ा मिसाल दित्ती है कि आया बच्चे नूं खेलण वास्ते लै जांदी है, अगर बच्चा रोंदी है आया हर किस्म दा दिल लगाउंदी है, उन्हूं चॉकलेट भी देवेगी, खिलौणियां नाल भी खिलावेगी, तोतलियां कहानियां भी सुनावेगी। अगर बच्चा किसी चीज़ तो नहीं बहलदा, माता पिता वास्ते ही रोंदा है, माता पिता कोलों बर्दाश्त नहीं हुंदा, भज के चुक के छाती नाल लगा लैंदे हाँ। जितना चिर असी मालक दी इस रचना दे खिलौणियां नाल खोलण लगे होए हाँ, वह भी सानूं कह लो भुलिया बैठा है। जदों हर तरफों असी ख्याल नूं कढ के मालक दी तरफ ही फोकस कर देना है, वह भी सानूं दया मेहर बख्शिश करके अपने नाल मिला लैंदा है। इस वास्ते गुरु साहब कहिंदे भाणे दा मतलब है मन विच कोई ख्वाहिश लै के भगती नहीं करनी, कोई तृष्णा लै के भगती नहीं करनी, सिर्फ मालक दी भगती मालक दे मिलन वास्ते करनी है। इसे वास्ते महात्मा कहिंदे जे राज कराएं तो तेरी उपमा, ये पीख मंगाएं तो क्या कट जाई। ऐ परमात्मा अगर दुनिया का राज पाठ भी तू सारी का दे देवेंगा, मैं तेरी भगती करनी है, तेरे नाल प्यार करना है, अगर मैनू दरबदर टुर थोकना खवाउणियां चाहुंदा है, मैं भी तेरे घर का दरवाजा नहीं छड्डना, मैं तो इसे दर का कूकर हाँ, और मेरे वास्ते जगह बैठण की कीड़ी है, समुद्री जहाज़ के कां तो उस जहाज़ तो बगैर वो टिकाणा कीड़ा है। इस वास्ते गुरु साहब कहिंदे जिहड़े मालक दे पाणी विच रह के नाम की कमाई करते हैं वह हमेशा वास्ते मालक दे परख दे काबल बन जाते हैं।
आपे परखे परखण हारे बहर सुलाक न होई जिनको नदर भई गुरु मेले प्रभ पाणा सच सोई पौन पानी मैं संतर रोगी रोगी तरत सभोगी मात पिता माया देह से रोगी रोगी कुटुंब संजोगी।
हुण गुरु साहब कहिंदे हन जो कुछ आ दुनिया सानू नजर आउंदी है पंजा तत्तां दी बनी होई है, हवा पृथ्वी पानी हवा और अग आकाश वगैरह जो कुछ पंजा तत्तां दा बनिया होया है, गुरु साहब कहिंदे सब ने नाश हो जाना है, सब ने फला हो जाना है, इन्हां पंजा तत्तां ने भी नाश हो जाना है। हुण डिटेल विच कहिंदे हन सब तो ज़्यादा अगर दुनिया ते साडा किसे दा आसान है साडे माता पिता दा आसान है, सानू केवल जन्म ही नहीं दिंदे साडे वास्ते कितने कितने दुख और मुसीबतां दुनिया दे ताने बेणे सहिंदे हन। और गुरु साहब कहिंदे ये भी थोड़ी कोई सहायता नहीं कर सकते, कोई मदद नहीं कर सकते, असी इन्हां दे जरिए पैदा जरूर होंदे हाँ, साडे बच्चे साडे जरिए पैदा होंदे हन, ना ये साडे बन सकते हैं ना असी कदे बच्चियां दे बन सकते हाँ, वो अपनी प्रलभत लै के आए हैं, असी अपनी प्रलभत लै के आए हाँ। सो इन्हां नाल लैणे देने का हिसाब है, गरजा का प्यार है, जदों उन्हां दा वक्त आया उन्होंने चले जाना है, साडा वक्त आया असी चले जाना है, स्टेज पर आके सारे एक्टर आपो अपना पार्ट करते हैं, जिस जिस का पार्ट उन्होंने मिलया है वह अपना अपना पार्ट अदा करके स्टेज तो उतर जाता है। इस वास्ते गुरु साहब कहिंदे हैं इन्हां चो कोई चीज़ थोड़ी मुहब्बत थोड़ी भगती थोड़े प्यार के काबल नहीं है, माया दुनिया की तन दौलत जदादा वगैरह जे ये चीज़ा कदे किसी के नाल जांदियां हुंदियां, मैं अर्ज़ की सी लोगों ने पहला ही बुक करके भेज छड़ियां सी, ये जिहड़ियां रजिस्टरियां साढ़े नाँ चढ़िया हुई सी, जे असी बुजुर्गों के नाँ नहीं रहन दित्तियां ये कोठियां वगैरह जमीना वगैरह साढ़े नाँ साढ़े बाल बच्चों ने कदों रहन देनिया हैं। इस वास्ते गुरु साहब कहिंदे इन्हां दे नाल क्यों तुसीं जफा पाई बैठे हो, इन्हां चीज़ां ने इत्थे ही रह जाना है, ये साड़ी देह जितना साडा दुनिया नाल संबंध और तलक है, कल मैं खोल के अर्ज कर चुका हाँ, ये साड़ी देह दे कारण है। जितना चिर दीह विच बैठे हाँ सब कुछ सानू अपना नज़र आता है, असी अपनी बनाने की कोशिश करते हाँ। लेकिन स्वामी जी ने कहा सी देह तो काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी नूं 50-60 साल वास्ते मिलिया है, किसी नूं 80-90 साल वास्ते मिलिया है। जितने सुवास मालिक ने बख्शे हैं, भुगतन तो बाद हर एक ने देह इत्थे ही छड़ जानी है। किसी की अग्नि के सपुरद होकर रह जाती है, किसी की मिट्टी के सपुरद होकर रह जाती है। जे देह ही साडा साथ नहीं, जे देह ने ही साथ छड़ देना है, और दुनिया की कोई चीज़ साडा साथ दे सकती है? इस वास्ते कहिंदे हन रोगी सगल संजोगी, सारी दुनिया ने थोड़ा साथ छड़ देना है, सब रिश्तेदार ने थोड़ा साथ छड़ देना है। इन्हां चो कोई थी थोड़ी मोहब्बत, थोड़े भगती, थोड़े प्यार दे काबिल नहीं है। आप दे समझाउण दा मतलब, अगर थोड़े भगती और प्यार दे कोई काबिल है, वह परमात्मा है। इसे वास्ते कहिंदे कूड़ कूड़े न्यो लगा विसरिया करदार, किस नाल कीजे दोस्ती सब जग चलण हा। ये शरीर कूड़ है, इन्हें नाश हो जाना है। इसके अंदर बैठ के जिस रचना दे मोह और प्यार विच फसे हुए हैं, वह भी कूड़ है, उन्हें भी नाश और फना हो जाना है। ये कूड़ इस कूड़ दे ही मोह और प्यार विच फसया रहिंदा है, मालिक नूं भुलिया रहिंदा है, और किस कहिंदे कहिंदे विस परमात्मा नूं असीं भुले रहिंदे हाँ। गुरु साहब कहिंदे किस नाल कीजे दोस्ती सब जग चलण हार, सारी दुनिया वल नज़र मार के देखो, कोई चीज़ थोड़ी मोहब्बत, थोड़ी भगती, थोड़े प्यार दे काबिल नहीं है, हर एक ने थोड़ा साथ छड़ देना है। सो जेड़ा अपना है उन्हों अपना बनाना चाहिए है, जेड़े अपने बन नहीं सकते उन्होंने बनाने का अपना फायदा भी की है। इस वास्ते गुरु नानक साहब सानू सुत्या होया नूं जगाउंदे हन कि इन्हां चो मोह कढ़ो, इन्हां चो प्यार कढ़ो, उस मालिक की भगती रखो, मालिक नाल प्यार पाओ।
कौन पानी बैसंतर रोगी, रोगी धरत सभोगी, मात पिता माया देह से रोगी, रोगी कुटुंब संजोगी, रोगी ब्रह्मा विष्ण सरुद्रा, रोगी सगल संसारा।
हुण साडे देवी देवतियां दी तरफ आउंदे हन ब्रह्मा विष्णु महेश, जिहड़े दुनिया नूं पैदा करदे हन, दुनिया दी परवरिश करदे हन, दुनिया नूं नाश कर दिंदे हन। गुरु साहिब कहिंदे इहनां ने भी नाश हो जाणा है, इहनां ने भी फला हो जाणा है, इह भी तुहाडे भगती दे काबल नहीं हन, इह भी तुहाडे पूजा दे काबल नहीं हन। रोगी सगल संसारा, सारी दुनिया ने नाश हो जाणा है, सब दुनिया ने फला हो जाणा है। इसे वास्ते आप कहिंदे हर बिन सब कुछ मैला संतो, मालिक दे बगैर सब मैल है, सब कूड़ है, सब रोगी है, सब ने नाश हो जाना है, सिर्फ एक परमात्मा है जिहड़ा कदे नाश और फना नहीं हुंदा। इसे वास्ते जपजी साहब की पहली पौड़ी विच गुरु नानक साहब ने कहा सी आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु साहब कहिंदे साडे तजर्बे दे अंदर सर्च करदे करदे एक ऐसी चीज़ आई है जिहड़ी आद जुगाद तो सच चली आ रही है। सच का मतलब जिहड़ी कदे नाश नहीं हुंदी, कदे फला नहीं हुंदी, उस सिर्फ एक है जिहड़ी सब तो पहला सी, हुण भी है, सतयुग विच भी सी, त्रेतर द्वापर विच भी सी, और जिन्हें हमेशा रहना है वह सिर्फ एक परमात्मा है। बाकी सब ने नाश हो जाना है, बाकी सब ने फना हो जाना है।
रोगी ब्रह्मा विष्णु सरुद्रा, रोगी सगल संसारा, हर पद चीन भय से मुक्ते, गुर का शब्द विचारा, रोगी सात समुंद से नदियां, खंड पताल से रोग भरे, हर के लोक से साच सोहेले, सर्वी थाई नदर करे।
ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ, ਨਦੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਔਰ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਿਆਲ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜੋ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰੋਗੀ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦ ਸੇ ਨਦੀਆਂ ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਸਰੋਗ ਭਰੇ ਹਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸੇ ਸਾਚ ਸੁਹੇਲੇ ਸਰਬੀ ਥਾਈ ਨਦਰ ਕਰੇ ਰੋਗੀ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਖ ਧਾਰੀ ਨਾਨਾ ਹਠੀ ਅਨੇਕਾ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਰਹਿ ਕਿਆ ਬਪੂਰੇ ਨਹਿ ਬੂਜੈ ਇੱਕ ਏਕਾ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭੇਖ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਭਭੂਤ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਟਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੰਗ 'ਤੇ ਭਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੱਤ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਢਿਆਂ ਦਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਬਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਭੇਖ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਸ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤਿਸ਼ਨਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭੇਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਪਰਮਹੰਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨਿਜ ਘਰ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਘਰ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਪਰਮਹੰਸ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ? ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਔਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਸਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੇ, ਜੋ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਔਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਸਾਧਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਆਰਜਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਸਵਾਸ, ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਚੱਕਣ ਚਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੁਰਤ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮਧਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੋਗੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੜਕਦੇ ਰਹੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲੜਕੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਖਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।
ਰੋਗੀ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਖ ਧਾਰੀ ਨਾਨਾ ਹਠੀ ਅਨੇਕਾ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਰਹਿ ਕਹਿ ਬਪਰੇ ਨਹਿ ਬੂਜੈ ਇੱਕ ਏਕਾ ਮਿੱਠ ਰਸ ਖਾਏ ਸੋ ਰੋਗ ਭਰੀ ਜੈ कंद मूल सुख नाही, नाम विसार चल है अन मार्ग, अंत काल पछताई।
हुण आप कहिंदे आम असीं पिंड पड़ाउंदे हाँ, पंडतां वगैरह नूं बुलाउंदे हाँ, पाइयां वगैरह नूं बुलाउंदे हाँ, जिहड़े लोग गुजर जांदे हन उहनां दी याद विच उहनां नूं खाणे वगैरह बुलाउंदे हाँ, बिस्तरे दिंदे हाँ, कपड़े दिंदे हाँ, ताकि उहनां ते कृपा हो जा। कहिंदे इस तरह उहनां दीआं मुक्तियां नहीं हो सकदियां, भुखे रहण दे नाल भी मुक्ति नहीं हो सकती, ना कंध मूह अपना घास फूस वगैरह खा के गुजारा करन दे अंदर भी मुक्ति नहीं है, उपवास वगैरह रखण दे अंदर भी मुक्ति नहीं है। गुरु साहिब कहिंदे कि नाम विसार चल अनमार्ग अंत गया पछताई, नाम की कमाई करन दा तरीका छड़ के जिहड़े भी रस्ते ते चलण की कोशिश करोगे तुहानू मौत दे वेले पछताउणा पवेगा, एवें तुसीं कीमती जिंदगी दे वक्त नूं जाया कर दिता। गुरु साहब दे कहण दा मतलब है इन्हां बाहर मुखी साधना दे अंदरों कदे भी तुसीं मुक्ति नहीं हासिल कर सकते। तुहानू पता है गुरु नानक साहब जदों हरिद्वार गए हन, लोग सूरज नूं पाणी दे रहे सीगे, आपने सूरज वल पिठ करके दूसरी तरफ पाणी देना शुरू कर दिता। लोगों ने कहा तेरी मत नूं की हो गया, सूरज किस तरफ है, तू किहड़ी तरफ पानी दे रहा है। कहिंदे मेरे करतारपुर गांव दे विच खेत सुक रहे हैं, खेती मेरी, मैं 200-250 मील दूर उन्हें पानी दे रहा हाँ। उन्होंने कहा एडी दूर पानी किस तरह पहुँच जाएगा, कहिंदे थोड़ा जे सूरज ते पानी पहुँच सकता है तो मेरा खेतों से भी पानी पहुँच जाएगा। सो महात्मा के समझाने के तरीके हैं ये, जो कुछ असी पंडता भाइयों नूं दिंदे हाँ जे ये चीज़ां पहुँच सकदियां हुंदियां ते इस तो सस्ता मुक्ति दा सौदा होर की हो सकता है। सो असीं भोग पवा छड़दे हाँ, पुन दान कर छड़दे हाँ, चीज़ां दे छड़दे हाँ, मन विच तसली हो जाती है और रूह सीधी सचखंड चली गई होवेगी। ये मुक्ति इन्नी सस्ती नहीं, सानूं जींदे जी हासिल करनी पैंदी है। इस वास्ते गुरु नानक साहब हर किस्म के वहमां भरमां संकल्पां चों सानूं ख्याल कढ़दे हन कि अच्छी तरह इस चीज़ नूं मन विच बिठा लो कि जो कुछ थानू मिलना है सिर्फ शब्द की कमाई तो मिलना है, नाम की कमाई तो मिलना है। तुसी भावें सोने का किला दान कर दियो, गुरु नानक साहब ने कहा, ता भी मुक्ति नहीं है। हड्डियां दा बर्फां में जाके ढेर बन जावो ता भी मुक्ति नहीं है। बनारस में जाके आरे नाल चरवा लो ता भी मुक्ति नहीं है। 24 घंटे हवन करते रहो, जिसम के छोटे छोटे टुकड़े करके तुसी अपने आप नूं जाल लवो समिगरी की बजाए, ता भी थानू मुक्ति नहीं मिल सकती। गुरु साहब कहिंदे अगर मुक्ति है तो सिर्फ शब्द की कमाई विच है, नाम की कमाई विच है। नामे तुल ना पुजी सब डिठी ठोक बजाए, ये गुरु नानक साहब के बचन है कि मैं कुछ सुनिया सुनाइया पढ़िया पढ़ाइया गल्ला कह नहीं आया, थानू जाती तजर्बा दसन वास्ते आया हाँ कि कोई चीज़ कदे नाम भगती का मुकाबला नहीं कर सकती। इसे वास्ते बाणी विच लिखते हैं कि बिन नामे होर पूज ना होई परम पुली लोकाई। अच्छी तरह मन विच बिठा लो कि नाम की कमाई तो बगैर मालिक की कोई भगती ही नहीं है, मालिक की कोई पूजा ही नहीं है। इस वास्ते कहिंदे बिन नामे को संग ना साथी, मुक्ते नाम ते आवणिया। किसी चीज़ ने दुनिया चो थोड़े नाल नहीं जाना, अगर मुक्ति है तो शब्द की कमाई ते नाम की कमाई ते। बिन नामे दर टोई ना ही ता जम करे खुआरी, नाम की कमाई तो बगैर तुसी कदे मालक दे घर नहीं पहुँच सकते, जमदूतां दे हथों थानू खराब होना पवेगा। इसे वास्ते पहली पातशाही ने कहा सी, नानक नाम न विसरे छूटे शब्द कमाए। भरावा अच्छी तरह मन विच इस चीज़ नूं गंढ दे के बैठ कि नाम नूं तां कदे सुपने अंदर भी भुलण की कोशिश ना करी। जदों भी तू देह दियां बंधना तो छुटकारा हासिल करेगा केवल शब्द की कमाई करके, केवल नाम की कमाई करके। सो गुरु करने तो सानू बाहर मुखी साधना चो, कर्म कांड चो, इन चीज़ों चो कढ़ के सिर्फ साढ़े ख्याल नूं शब्द के नाल ही जोड़िया है, नाम के नाल ही जोड़िया है।
मिठ रस खाए सो रोग भरी जय, कंद मूल सुख नाही, नाम विसार चल है अन मार्ग, अंत काल पछताई। तीर्थ परम रोग ना छूटस, पड़िया बाद विवाद भया। दुविधा रोग सो अधक वडेरा माया का मोहताज भया।
हिंदुस्तान के अंदर 68 मशहूर तीर्थ हैं। गुरु साहब साढ़े तीर्थां बुलाते हैं कि तुम सारे तीर्थां की यात्रा कर लवो तो भी तुम मुक्ति हासिल नहीं कर सकोगे। आप दे कहने का मतलब कि होर कोई तरीका ही नहीं है, होर कोई साधन ही नहीं है। ये तीर्थ तो संतां महात्मा ने बनाए हैं, तीर्थां ने कदे संत महात्मा नहीं बनाए। ये तीर्थ किस तरह बनते हैं? जिथे भी संत महात्मा बैठ के नाम का प्रचार करते हैं, मालिक की भगती करते हैं, वह जगह साढ़े वास्ते अच्छ तीर्थ बन गए हैं। तुम अजक तीर्थां की जाके हालत देख लवो, या तो गौरमेंट की पब्लिसिटी उत्थे पब्लिसिटी प्लेटफॉर्म लगे हुए हैं, या मवैशियों के मेले लगे, मवैशियों मंडिया के मेले लगे हुए हैं, या एक दूसरे कौम मजहब मुल्कों के झगड़े खड़े किए जाते हैं। जिस परपज मकसद वास्ते महात्मा उत्थे बैठे से, जिन्हों की याद में तीर्थ बनाए से, उन्हों का ना कोई जिक्र करता है, ना किसी को पता ही है कि जगह बनाई किस वास्ते सी, किहड़ा महात्मा इत्थे बैठा की प्रचार करता सी। सो ये तीर्थां का कसूर नहीं है, साडा कसूर है जिस परपज के लिए अज तीर्थां नूं असीं इस्तेमाल करन लगे हुए हाँ। इस वास्ते गुरु साहब कहिंदे तीर्थ यात्रा करन दे नाल भी तुसीं कदे मुक्ति नहीं हासिल कर सकते। मुक्ति तो सिर्फ शब्द की कमाई विच है, नाम की कमाई विच है।
तीर्थ पर मैं रोग ना छूटस पड़िया बाद विवाद भया दुबदा रोग स्वाद के वडेरा माया का मोहताज भया गुरमुख साचा शब्द सलाह है मन साचा तिस रोग गया।
हुण आप गुरमुखां दी महिमा करदे हन, गुरमुख साचे हन, गुरमुख निर्मल हन, प्योर हन, पवित्र हन। वो कदे मरण जमण दे दुखां विच नहीं आउंदे। वो किस तरह इस गति नूं पहुंचे? शब्द सलाहे, शब्द की कमाई करके, शब्द की महिमा करके उन्हां दा मन निर्मल हो जाता है, प्योर हो जाता है, पवित्र हो जाता है। वह मालिक दे मिलन दे काबल बन जाते हैं। जदों असीं उन्हां दी संगत विच जाते हाँ, असीं उन्हां दी सोबत विच जाते हाँ, वो साढ़े भी ख्याल नूं उस शब्द और नाम दे नाल जोड़ के सानू भी अपने वर्गा ही कर लेंदे हैं। इसे वास्ते गुरु साहब कहिंदे मुक्ता सेवे मुक्ता होवे होमे ममता शब्दे खोवे। जिहड़े लोग होमे और ममता नूं शब्द की कमाई करके अपने अंदरों खो दिंदे हैं वह मुक्ति हासिल कर लेंदे हैं। जदों असीं उन्हां दी संगत और सोबत विच जाने हाँ, वह साढ़े भी ख्याल नूं शब्द के नाल जोड़ के सानू भी अपने वर्गा मुक्ता बना लेंदे हैं।
गुरमुख साचा शब्द सलाह है मन साचा तिस रोग गया नानक हर जन अन दिन निर्मल जिनको कर्म निशान पया।
सब कुछ बयान करके गुरु साहब कहते हैं जिन्हों जिन्हों जीवों से मालिक की दया मेहर बख्शिश हो जाती है, गुरमुखों को जाके शब्द और नाम की कमाई विच लग जाते हैं, वह हमेशा निर्मल हो जाते हैं, प्योर हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। सानू भी चाहिए है गुरमत तो गुरु नानक साहब के उपदेश तो फायदा उठा के अपने ख्याल नूं अंदरों सच्चे शब्द के नाल जोड़िए, सच्चे नाम के नाल जोड़िए।
नानक हर जन अन दिन निर्मल जिनको कर्म निशान पया।